श्रीमद्भागवत से श्रीमद्भागवत शुद्ध भक्ति का स्वरूप बतलाया, जिससे लोगों को सहज से सहज रूप में भक्ति क्या है ये समझ में आ सके। इसलिए कल उदाहरण इत्यादि के साथ में बदला है, जिसके श्रवण से जगत के सारे कष्ट दुख सदा के लिए जा सकते हैं और अपने जीवन में सुख और शांति कोई पा सकता है। कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं, जो भगवान की इन कथाओं का श्रवण करेगा कुछ ही दिनों में उसकी सांसारिक आसक्ति संपूर्ण रूप से कट जाए, उसे वैराग्य हो जाए। और जितने भी भगवत तत्व ज्ञान है उसके हृदय में स्फूर्ति हो जाए, कुछ भी उससे बाकी नहीं रहे। कृष्ण तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, भक्ति किसे कहता है, अपने आप इसके श्रवण से ही हो जाएगा। और यदि मनन करे तो बहुत जल्दी होगा। भगवान इन कथाओं को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। जो सुनता है उसके हृदय में वो कथा के रूप में प्रवेश कर एक सद्बंधु की भांति, एक मित्र की भांति उसके हृदय को में जितनी भी मलिनता है उसको दूर कर देते हैं और उसका सांसारिक आसक्ति इत्यादि दूर हो जाता है और भगवान उसके हृदय में बैठ जाते हैं। ये कथा भागवत की कथा कृष्ण के गोलोक वृंदावन में चले जाने पर, अंतर ध्यान हो जाने के बाद, 2 वर्ष के बाद परीक्षित महाराज जी का राज्य हुआ और उसमें उन्होंने परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत की कथा सुनाई थी और उसके 30 वर्ष बाद अर्थात 230 वर्ष बाद सनत कुमार, चारों कुमारों ने जो ब्रह्मा जी के आदि पुत्र हैं, उन लोगों ने नारद जी को सुनाया और उसके 30 वर्ष बाद और गोकर्ण ने धुंधकारी का उद्धार करने के लिए इसी भागवत की कथा कही। एक समय की बात है, कृष्ण के अंतर ध्यान होने के 230 वर्ष बाद नारद जी संपूर्ण लोकों में विचरण करते हुए ब्रह्मलोक में, शिव लोक में, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में और भारतवर्ष के हरिद्वार में, दक्षिण भारत के कांची इत्यादि, रामेश्वर इत्यादि स्थानों में तथा जगन्नाथपुरी इत्यादि जितने भी तीर्थ स्थान है, सब तीर्थ स्थानों को घूम करके बड़े बेचैन हो रहे थे। उनको कहीं भी शांति नहीं आ रही, सुख नहीं हो रहा था। तो विशाला नगरी में अर्थात आज का जो हरिद्वार कहलाता है गंगा के तट पर, विशाला नगरी में हरिद्वार में उनकी भेंट हुई गंगा के तट पर अपने बड़े भाइयों के साथ। उनके बड़े भाई हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनसे भेंट हुई। भेंट होते ही देख करके बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई नारद से पूछा, अरे भाई तुम बड़ी चिंतापूर्ण दिखाई दे पड़ रहे हो, तुम्हारी बड़ी चिंतित मुख उदास क्यों है, तुमको तो आज कभी भी मुख उदास नहीं होना चाहिए, मालूम होता है कि तुमको शांति नहीं है। क्या बात है बतलाओ, ऐसी तो कोई बात नहीं है जिसे तुम नहीं जानते, और भगवान के परम भक्त हो। उन्होंने कहा क्या बात कहूं आपसे, मैं त्रिलोकी का भ्रमण किया और भारतवर्ष के जितने तीर्थ स्थान है उनका भी भ्रमण किया, और भ्रमण करते 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 जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो देखा क्या एक तरुणी स्त्री, युवावस्था की लड़की महिला, तरुणी स्त्री रो रही है, बड़ी जोर से विलाप कर रही है, और उसके पास ही दो वृद्ध व्यक्ति इनके केश श्वेत हो गए थे और बड़ा दुर्बल हो रहे थे और कुछ मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, उनको देखा। उनको देखते ही नारद उनके निकट गए और पूछे, माताजी आप क्यों रो रही हैं, और ये जो तुम्हारे पास में ये दोनों वृद्ध लोग सो रहे हैं ये कौन है, और तुम्हारे विलाप का कारण क्या है। उन्होंने कहा क्या कहूं, मालूम होता है कि आप नारद ऋषि हैं, आज मेरा सौभाग्य है कि नारद जैसे आप जैसे हमने ऋषि को देखा, आज मुझे कुछ शांति आई। ये जो सो रहे हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मैं इनकी मैया हूं। उन्होंने कहा नारद जी बड़ी विचित्र बात है, अरे मैया को बूढ़ी होनी चाहिए और पिता बच्चों को तो नौजुवक होना चाहिए, तो यह मैया मैया तो तरुणी है और बेटे क्या है, वृद्ध पड़े हैं, उनके श्वेत केश हैं, ऐसा क्यों ना। ये महात्मन क्या कहूं, बड़े दुख की बात है, मेरा जन्म दक्षिण देश में हुआ और फिर वहां से कर्नाटक में आई, और कर्नाटक में आने पर मैं युवावस्था में आई, वहां तो बचपन बिता दक्षिण में, और वहां से कर्नाटक में आने के बाद मैं युवावस्था में आई। हमारे बेटे भी ये जो देख रहे हैं वहीं पर कर्नाटक में उनका जन्म हुआ। कर्नाटक मैंने दक्षिण भारत का एक स्थान, बैंगलोर इत्यादि का जो प्रदेश है, त्रावणकोर, वहां समुद्र के किनारे ये सब, तो वहां उनका जन्म हुआ, उनके और उनके बेटों का। और ये नवजोक हुए पालन पोषण हुआ कहा कर्नाटक में, और फिर वहां से महाराष्ट्र माने बंबई प्रदेश में, कहीं कहीं बहुत ही हमें सुख मिला, किंतु गुजरात में जाते ही मैं बूढ़ी हो गई और हमारे बच्चे भी ये दोनों बेटे भी बूढ़े हो गए, और वहां से बड़े दुखी होकर के हम लोग बूढ़े और बूढ़ी मैया और बेटे, इस दुख को दूर करने के लिए उपाय खोजते 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 संत महात्माओं से मिलते मिलते हम लोग किसी प्रकार से यहाँ आए वृंदावन में, और यहाँ आते हैं मैं तो तरुणी हो गई किंतु हमारे बेटे वैसे के वैसे ही मूर्छित हुए और सो रहे हैं और वृद्ध हो गए। मैं इसके लिए रो रही हूं कि मैं तो कहां नौजवान हूं और ये हमारे बेटे बूढ़े हो गए, मुझको शांति नहीं सुख नहीं। आप नारद ऋषि हैं, आप कृपा करके ऐसी कोई उपाय कीजिए मेरे लिए कि मुझे सुख शांति मिले और हमारे बेटे भी हमारी तरफ में हो जाए, जवान हो जाए। कहा जी हे माता जी, आपके लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं जहां से जैसे भी कोई उपाय करके आप लोगों को मैं युवक बना दूंगी, जैसे आप चिंता न करें, मैं अपने ध्यान से समाधि से देख रहा हूं कि आपका कैसे कल्याण होगा, मैं चिंता कर रहा हूं। ननका जी आप ठहरिए, मैं इसका पता लगाता हूं कि किस साधन के द्वारा आपके बच्चे और नौजवान हो जाएंगे और आप भी सुखी हो जाएंगे, वो सुखी रहेंगे। इसका मतलब क्या है, इस कहानी का? भक्ति का जन्म दक्षिण प्रदेश में हुआ, वहां पर रामानुजाचार्य कलयुग में मध्वाचार्य विष्णु स्वामी निम्बादित्याचार्य गोदा देवी जमुनाचार्य अलवर ये सब लोगों का जन्म हुआ और इन लोगों ने भक्ति का जन्म दिया वहां पर। माने जो संत लोग होते हैं वो हरि कथा कहते हैं तो भक्ति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए वहां पर जन्म हुआ। जैसे हम लोग हैं यहाँ भारत में, आप लोगों का जन्म होने पर भी, बल्कि यहाँ पर भक्ति जो थी वो भी गली चली गई कि ये तो स्वर्ग राज्य है, अब बिना काम के एक नौकर भी आपके पास नहीं रहेगा, काम सब करना पड़ेगा, पैसा भी खुवाएगा, भोग की सारी वस्तु है, इसलिए भक्ति बहुत भाग जाती। तो वहां तक जन्म हुआ और कर्नाटक में बड़ी हुई, वहां पर भी बड़े बड़े सब भक्त हुए हैं। और इसके बाद में महाराष्ट्र अर्थात बंबई प्रदेश में आने पर कहीं कहीं तो सुख मिला, और जहां गुजरात में प्रवेश किया वहां पर धनाढ्य लोग हैं सब। अभी स्वामी जी नारायण का मंदिर जानते हैं आप लोग, बड़े बड़े धनी गुजरात में हैं और विदेशों में भी जहां गए हैं काफी धनवान बन गए हैं। तो जहां धन होगा वहां पर भक्ति नष्ट हो जाती है, अभिमान आ जाता है, भोग की लालसा हो जाती है, इसलिए उन लोगों के लिए भक्ति संभव नहीं। भारत हमारा कृषि प्रधान देश और किसी प्रकार से परिश्रम करके अपना कृषि से जैसे हो नौकरी से जीवन उद्धारण कर मध्यम श्रेणी के लोग वहां है, न खूब गरीब है न खूब धनी, अब तो गरीब बीच में हो गए थे, अब फिर थोड़ा थोड़ा हालत सुधरने लगे। तो जहां मध्यम श्रेणी के लोग रहेंगे वहां पर भक्ति होगी, और जहां अत्यधिक धनी रहेंगे या अत्यंत दरिद्र रहेंगे वहां पर भक्ति नहीं होती, उनको किसी को समय नहीं मिलता, इसलिए गुजरात में जाते ही धनी प्रदेश में वो बुढ़ी हो गई। अच्छा तो कोई आदर ही भक्ति का नहीं करता ज्ञान विराग, वो सब समय धन को कमाने में और भोगने में व्यस्त रहते हैं। आप लोग भी यदि ऐसा करेंगे ना, धन कमाओ खाओ पियो ना, इट ड्रिंक एंड बी मेरी, तो भक्ति नहीं रहेगी, जीवन दुखमय हो जाएगा, सब समय शोक से व्याकुल रहेगी, बुढ़ापा और घर दबोचेगा और फिर मृत्यु आ जाए, फिर हाय हाय करते हुए मर जाए, फिर न जाने शुकर कुकर क्या। इसलिए गुजरात में तो बुरी हुई, और वृंदावन में सभी लोग भगवान का भक्ति करते हैं, सब जगह में आरती होती है सवेरे, सब लोग घर को छोड़ करके मंदिरों में चले जाते हैं, तुलसी की परिक्रमा होती है और गाय का दूध घी मंदिरों में सब चढ़ता है, वहां पर घर घर में आरती होती है, घर घर में ही मंदिर है, इसलिए भक्ति वहां पर जाते ही नौजवान हो गई, सब उनको पूछते हैं आकर। किंतु वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य का कोई महत्व नहीं है, वहां पर ज्ञान वैराग्य नहीं है, उनका आदर नहीं करता, भक्ति का आदर करते हैं, इसलिए हमारे बेटे तो बूढ़े हो रह गए और हम जवान हो गए। नारद जी ने क्या है? मैं इसका उपाय ढूंढ करके आपको बतलाता हूं। यह सोच करके पृथ्वी में ढूंढने लगे इसका कौन उपाय बतलाएगा, और चलते 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 हरिद्वार में गंगा के तट पर ऋषिकेश जहां है, ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में गंगा के तट पर पहुंचे और वहां अपने ये भाइयों को देखा तो ये व्याकुल हो रहे थे कुछ आसान। उन्होंने पूछा आपकी अशांति का कारण क्या है, आप तो भगवत भक्त हैं आपको अशांत नहीं होना चाहिए। एक बहुत चिंता है, वहां एक तरणी को मैंने वृंदावन में देखा, वो रो रही थी और उसके बेटे वृद्ध हो रहे थे और वो जवान थे। मैंने प्रतिज्ञा की है कि आपको इस विपत्ति से छुड़ा करके सुखी करूंगा, बेटों को भी नौजवान बना। किंतु कोई किसी ने उपाय नहीं बदला। उन्होंने कहा जी आप तो सभी जानते हैं ऐसी कोई बात है जो नहीं, और आप परम भक्तिमान है, आपके हृदय में भक्ति है। तो उन्होंने कहा हमको इस समय याद नहीं है, आप कुछ बतलाइए। उन्होंने कहा कि देखो आज से 200 वर्ष पहले सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भगवान का लीला चरित्र जो सुनाया था, जिसके सुनने से आदमी का हृदय पवित्र बन जाता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वो सुखी और शांत हो जाता है, अंत में अपनी आत्मा और परमात्मा को पहचान करके गुरु वृंदावन में चला जाता है, फिर जगत में नहीं आता। उसी कथा का श्रवण करना होगा और भक्ति को भी सुनाना होगा उनकी बेटी को भी, बेटों को भी, तो इससे जरूर वे लोग जवान हो जाएंगे और सुखी होंगे। मैंने कहा जी तो आप सुनाइए, आपसे बढ़कर के सुनाने वाला कौन होगा, आप तो सभी जानते हैं, और विशेष करके सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी की सभा में आप भी थे, नारद भी थे और वो लोग भी थे, तो उसी कथा हम लोगों को सुनाई। ये भागवत का प्रारंभिक ये बात है। अब सुनाने लगे, क्या सुनाने लगे, एक समय की बात है, ये सौनक आदि ऋषि सुनाने लगे चारों कर्म से, और ये सुनने लगे नारद, और भक्ति देवी के उनके बेटों को भी किसी प्रकार से लेकर के वहां उपस्थित किया उसी जगह हरिद्वार में। कथा होने लगी, सबको निमंत्रण दिया गया, सब लोग वहां पर, हजारों लोग, ऋषि महर्षि सब लोग, गृहस्थ भक्त लोग उपस्थित हुए, देवता भी वहां पर उपस्थित हुए। देवताओं ने सुखदेव जी से कहा हे महाराज सुखदेव गोस्वामी जी एक बात कीजिए, हम आपको स्वर्ग राज्य की सभी संपत्तियां, पारिजात पुष्प, नंदन कानन और जितना धन संपत्ति है सबको देते हैं, अमृत तक आपको देते हैं, आप परीक्षित को अमृत पिला दीजिए जो उसको फिर मरेगा नहीं, और ये जो भागवत की कथा है हमें दे दीजिए, हमको सुनाइए। उन्होंने कहा रे मूर्खों ऐसा मैं नहीं कर सकता, अमृत के बदले तुमको ये दो, अमृत का भी अमृत, अमृत पाने वालों को भी कष्ट होता है, देवता लोग अमृत पी करके अमर तो कुछ दिन के लिए हो जाते हैं, तीन उनका उनकी ईर्ष्या द्वेष मन की भावनाएं ये सब कहां जाती है, वे लड़ते हैं असुरों से डरते हैं, उनमें प्रेम का भाव है, भगवान की लीला कथा सुनने को समय नहीं, कृष्ण से भी लड़ते हैं, कृष्ण की बात जो भगवान है उनको नहीं सुनते, सोचते हैं कि हम ही लोग भगवान, वहां पर भी सुख नहीं है, इसलिए मैं अमृत तुमको नहीं दूंगा, भागवत कथा नहीं दूंगा, अमृत तुम अपने घर में रखो। इसके बाद में परीक्षित को सुनाना आरंभ किया, कैसे सुनाना आरंभ किया, परीक्षित महाराज जी एक समय कलयुग के आने के बाद में कहीं गए हुए थे आखेट के लिए, जो राजाओं का स्वभाव होता है शिकार के लिए, और दिन भर भूखे प्यासे रहे, भूखे प्यासे रहने से उनको बड़ी क्लांति और बड़ी प्यास लग रही थी। पानी ढूंढते ढूंढते वहीं पर एक ऋषि का आश्रम था जिनका नाम श्रमिक ऋषि था, श्रमिक ऋषि के आश्रम में देखा समत ऋषि तो एकदम ध्यान में मग्न है, समाधि लगी हुई है, उन्होंने सोचा कि मैं इसके आश्रम में आया, इस मुनि के हमारी प्रजा है ये, और वो आदमी क्या दयालु है, क्या साधन भजन करने वाला, भगवान का भजन करने वाला हो, ये प्यासा को पानी भी तक नहीं पिला सकता। उन्होंने आवाज दी, कोई है पानी पिलाओ, कोई है पानी दो, मैं प्यासा हूं। तीन चार बार करने पर भी वो तो ध्यान में मग्न थी, नहीं सुनी। उन्होंने सोचा ये ढोंगी व्यक्ति है जो प्यासा को पानी नहीं दे सकता, जिसको कपड़े नहीं है कपड़ा नहीं दे सकता है, ये सामाजिक काम नहीं कर सकता है, वो क्या धर्मात्मा हो सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये हमारे राज्य में इसको दंड क्या देना है, दंड क्या दूं। एक मरा हुआ ही पर सांप था पड़ा हुआ, विषधर, उसको अपने धनुष के नोक पर लेकर के उसके गले में लपेट दिया, लपेट करके चले। किंतु चलने के साथ ही साथ में रास्ते में ही इनको ऐसा कुछ भान हुआ, मैंने बहुत भारी गलती की है। ऋषि महर्षि लोग ध्यानस्थ रहते हैं, यदि सचमुच में ही वो ध्यान में रह हुए तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। साधु संतों का, गाय का, वेद शास्त्र का, माता पिता का अनादर जो करता है उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। तो ये विनाश का लक्षण है, कहीं हमारा सर्वनाश न हो जाए, ऐसा सोच ही रहे थे। और घर के अभी निकट नहीं पहुंचे, राजमहल के बीच ही में थे। इतने में इधर हुआ क्या, उसी शमिक ऋषि का बेटा, 5 वर्ष का लड़का, अभी नंगे बच्चों के साथ में खेल रहा था एक नदी के तट पर पास ही में। इधर पिताजी की समाधि लगी हुई है, और पहुंच करके जब खेल रहा था तो किसी एक बच्चे ने आकर के बतलाया, अरे तुम्हारे पिताजी के गले में सर्प मरा हुआ पड़ा हुआ है, न जाने कौन डाल गया। अब उनको क्रोध हो गया है, हमारे पिताजी का अनादर किया, 5 वर्ष का लड़का भी लंगोटी नहीं बांधे, और क्रोध से अभिभूत होकर पानी लिया एक चुल्लू और लेकर के मंत्र से पूत करके और छोड़ा, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसको आज से 7वें दिन महाविशुद्धा तक्षक ना उसको काटेगा, वो मर जाएगा, किसी प्रकार से जीवित नहीं रह सकता। और इसके बाद में फिर रोते रोते पिताजी के यहां पहुंचा, देखा जी सचमुच तो सांप पड़ा हुआ है। वो रोते रोते पिताजी की गोदी में बैठ गया, खूब जोर से रोने लग गया। उसके बहुत दूर रोने पर उनकी समाधि धीरे धीरे खुली, और पूछा जैसे बेटे तू रो क्यों रहा है, पिताजी आपका किसी ने अपमान किया, आपके गले में मरा हुआ सर्प देखिए तो पड़ा है। उन्हें देखा जी सचमुच सांप का मरा हुआ सर्प। उन्होंने कहा पिताजी मैंने उस दुष्ट को दंड दिया है जो हमारे पिताजी को सर्प की माला पहनाई है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग उसे काटेगा, अब कोई भी विश्व में नहीं रक्षा कर सकता। कारी समाधि लगाया, देखा कि कौन डाला। मैंने कहा ये बेटे तुमने देखा जे किसने ये किया, तो नहीं तो मैं तो समाधि में देख रहा हूं। परम धर्मात्मा और परम भक्त परीक्षित जी आए थे, उनको मैंने पानी नहीं दिलाया पिलाया, और उन्होंने सांप लगा दिया हमारे। एक छोटे से अपराध के लिए तू ब्राह्मण का बेटा ऋषि का बेटा होकर के इतना क्रोध, क्रोध को दमन नहीं कर सका तो तुम ऋषि का बेटा कैसे हुआ, तू हमारा बेटा होने योग्य नहीं हो, उसको डांटा, क्या तुमने कर दिया। अब परीक्षित राजा नहीं रहेंगे, क्या होगा, चोर डकैत बढ़ जाएंगे राज्य में, सब जगह चोरी करेंगे, हत्याएं होंगी, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, सभी लोग अपना धर्म छोड़ देंगे, कंगाल बन जाएंगे, जानते हो, सब प्रजाएं अधार्मिक हो जाएगी, फिर क्या होगा, उनका विनाश हो जाएगा। तुमने इतना बड़ा भारी अपराध किया, खैर जो होनी थी तो होनी थी। उन्होंने अपने दो पटकों को, छात्रों को बुलाया, बेटी जाकर के परीक्षित महाराज जी को खबर दो कि उनको सातवें दिन तक छत डसेगा, कोई अपने परमार्थ के लिए, सुख शांति के लिए कुछ भी उपाय हो करे। अभी रास्ते में बड़े सोच के साथ में जा रहे थे कि ये दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज परीक्षित, आपको शमिक ऋषि के पुत्र ऋषि, वो छोटे से बालक ने आपको संपात दिया है, पिताजी के गले में सांप देकर, सातवें दिन सांप काटेगा, कोई भी नहीं बचा सकता। ऋषि को तो, शमिक ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ, किंतु सोचा जब जो होना था वही है, सोई जरा मर रची रहा, वही होगा जो होना है, जो भगवान ने उसको कर्तव्य रखा है ना? को कोई तर्क बड़ा वो तर्क करने से कुछ लाभ नहीं है, इसलिए परीक्षित महाराज जी अपना कल्याण किसमें हो उसकी चिंता करते हुए करें। वो उनको कह करके आए, उस समय वो बड़े प्रसन्न हो गए, अब तक बड़े दुखी थे। हम अपनी मृत्यु का समाचार सुन करके घबरा जाते और वो सुखी हुए। उन्होंने सोचा, आ मेरे सौभाग्य की बात है कि आज हमारा कुछ नष्ट नहीं हुआ, केवल सांप काट देगा, मैं मर जाऊंगा, हमारा शरीर छोड़ दूंगा, फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा और नया शरीर मिल जाएगा, इसलिए यह दुख की बात नहीं है। यदि मेरी भक्ति नष्ट हो जाती तो हमारा सर्वनाश हो जाता। उन्होंने ये नहीं दिया विचार, ठीक है। ऐसा सोच करके अपने राजभवन में भी नहीं गए, बार सभा अपना मुकुट, राजकीय वेशभूषा सब हटा दिया, बच्चों को कोई निर्देश भी नहीं दिया। परीक्षित के बेटे का नाम शांत जन्म लिया था और गंगा के तट पर पहुंचे और वहीं गंगा जी को प्रणाम कर उसको सामने रखकर प्रायोपवेशन में बैठ गए, अर्थात खाना पीना सब छोड़ करके वहीं पर बैठ गए और चिंता करने लगे मुझे क्या करना चाहिए। इतने में भारतवर्ष के, बृहत भारतवर्ष के जितने ऋषि मुनि महर्षि सब लोग, इतना 88,000 जिसमें नारद गौतम वशिष्ठ कभी हवि अंतरिक्ष इत्यादि जितने भी अनुभवी ब्रह्म ज्ञानी और भक्त लोग थे, सभी वहां पर उपस्थित हुए। उनको देख करके कहा जे, अहो कहां सा इन ऋषि मुनियों के दर्शन मुझे हुए, भगवान का दर्शन करना सुलभ है किंतु इन ऋषि महर्षियों के जो भगवत तत्व के ज्ञाता है, जिनके दर्शन करने से भक्ति होती है और उनकी सेवा करने से न जाने क्या हो जाएगा, उनके दर्शन से ही हो जाता है। पुनः दर्शन अतः भगवान का दर्शन सुलभ है, ऐसे महाभक्तों का दर्शन करना सुलभ नहीं। ये हमारे द्वार पर बिना बुलाए आ गए, अब इससे बड़ी हमारा, इससे बड़ा हमारा क्या सौभाग्य हो सकता है। ये तो हमारा वरदान हुआ, ये महात्मा लोग हमको मिले, अब मुझे ये अवसर हो गया विश्वास, अब हमारा कल्याण होने वाला है, फिर जगत में हमारा जन्म नहीं होगा। मैं समझ गया, आप लोग भी समझे। यदि सचमुच में भगवत तत्व को जानने वाला, भक्ति संपन्न किसी सच्चे संत का दर्शन हो जाए, समझोगे अब तुम्हारी घड़ी अच्छी आने वाली है, तुम्हारे संसार की आसक्ति कट जाएगी और भगवान के चरणों में प्रेम रूपी मोक्ष हो जाएगा और उसके बाद में भगवान की सेवा मिल जाएगी, अनंत काल के लिए भगवान के धाम में रहकर उनकी सेवा। यह शरीर आज न कल छूटने वाला है, ये समझो। जगत की कोई चीज लेकर के नहीं जाना है, इस चीज को भी समझो, जरूर जरूर छूटेगा। जो लड़कियां हैं वो बड़ी हो जाएंगी, जो बड़ी हैं वो बूढ़ी हो गए, जो बूढ़ी है वो मर जाएंगी। लड़के जो हैं वो जवान होंगे, जो जवान है वो बूढ़े होंगे, और जो बूढ़े हैं सुपर है। कोई कोई जवानी अवस्था में बचपन में ही कोई माता के गर्भ में ही मर जाते हैं अपने कर्मों के फेर। इसमें जीवन में एक जीवन का एक दिन का भी जीवन सौभाग्यवान है यदि हरि भक्ति हो। और वृक्ष और पहाड़ों की तरफ में कोटि कोटि वर्षों की आयु लेकर के भी कुछ लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। इसलिए यह जन्म केवल भगवत अनुभूति के लिए हो, आत्म अनुभूति के लिए हो, भगवान की भक्ति के लिए हो। भक्ति बड़ी सहज है। मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, जानते हैं कितना कसरत व्यायाम करते हैं, कम से कम आध घंटा उठक बैठक दंड बैठक करते हैं। ईसाई लोग भी कुछ करते हैं, किंतु भगवान का भक्त क्या करता है? कुछ भी नहीं। हे कृष्ण कृपा करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे
अलबेला, छोटा सा किंतु अलबेला। अच्छा पहले इसका एक कड़ी सुनाएगा, कहाँ है माधव, खेल रहा है बच्चों में, छोड़ दो ना है वो आया नहीं, छोड़ दो खेलने दो, उसको बैठना चाहिए। हाँ बोलो, आगे आ जाओ। महिलाओं में और भी तो गाने वाली होंगी। अच्छा तो पहले तुम
लोबा के बिहारी लाल की एक मियानी, एक मियानी एक हर जगह उसका नजारा है, एक में जाते भूल जाते हैं वो कितना पास तो हमारे हैं, भूल जाते
ऐसे नहीं तरह
विभागचार कर चुके थे। वेद माने ज्ञान, नॉलेज, अथा नॉलेज जो मनुष्य के दिमाग में ना है वो ज्ञान वेद कहलाता है। वेद माने जानना ज्ञान। वेदों का विभाग कर दिया चार भागों में, उपनिषदों को प्रकाश किया, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 शाखा पुराणों की रचना हो गई, महाभारत की भी रचना हो गई, उसमें गीता की भी रचना हो गई, किंतु व्यास देव जी को अभी चित्त में प्रसन्नता नहीं है। क्यों नहीं प्रसन्नता है? सोचते हुए भी सोच न सके। इतने में नारद ऋषि आए, बोले जे बेटे, उनके गुरु हैं, बेटे तुम्हारा चित्त अशांत और क्षुब्ध है, तुम्हारे चित्त में आनंद नहीं है, क्यों? तो गुरु जी यही तो प्रश्न मेरा है। साधारण लोगों को अपना ज्ञान रोग का नहीं रहता है, जो मुझे क्या रोग है, क्या बीमारी है, तो वो डॉक्टर के पास में, वैद्य के पास में जाते हैं, तो वो नाड़ी देख करके या परीक्षा करके, आजकल तो परीक्षाएं हो गई है, रक्त परीक्षा, पैखाना, टट्टी, सब कुछ, पैखाना, ये सब की परीक्षा होती है। तब पहले लोग, वैद्य लोग इस पर हाथ रख देते और बता देते कि क्या बीमारी है, क्या अभी वैद्य है, मैं थोड़े ऐसे नहीं है, अच्छे पहले थे ऐसे, और वो दवा देने के साथ में रोग दूर हो जाता था, लोग कम मरते थे। तो आप गुरु हैं, आप बतलाइए मुझे क्या रोग है, मैं अभी तक प्रसन्न क्यों नहीं हुआ। जब तक सदगुरु का संग न हो तब तक ब्रह्मा जी के लिए भी बतलाया गया, ऐसा ज्ञानी हो, शंकर जैसा भी ज्ञानी हो, उनका कल्याण होना बड़ा कठिन है, उनको मार्ग प्रदर्शक करने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। हारमोनियम बजाना है तो गुरु की जरूरत, स्कूल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ना है, वकालत पढ़नी है, जो कुछ बिजनेस पढ़ना है, तो भी अपने किसी गुरु की जरूरत है। और भगवत भक्ति जो कि तन मन वचन से अगोचर है, उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं होगी। इसलिए बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। ब्रह्मा शंकर के समान गुरु होने पर भी गुरु की आवश्यकता है। कृष्ण जी ने अवतार लिया तो अपने गुरु बनाया सांडिल्य ऋषि को, गर्गाचार्य को पुरोहित बनाया, वशिष्ठ जी को रामचंद्र जी ने, भाइयों ने, दशरथ जी ने अपना गुरु बनाया। तो बिना गुरु के काम नहीं चलता, जगत में आने पर बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, उसके वचनों में विश्वास होना चाहिए, उस गुरु का लक्षण क्या है ये जानना चाहिए। पानी पियो तो छान कर, पानी ऐसे मत पियो, छान कर हाथ पिए, यहाँ तो अब चालू नहीं है, किंतु पहले पानी पियो छान कर, और गुरु गुरु बनाओ जानकर, गुरु की परीक्षा करके गुरु बनाओ। यदि संसार में उनकी आसक्ति है और उनको वैराग्य पैदा नहीं हुआ और भगवान का भजन करने में सिद्ध नहीं है, भगवत अनुभूति नहीं आती, गुरु मत बनाओ। बाजार में, इंडिया के बाजारों में यहाँ पर क्या यानी क्या होता है, एक हड़िया रसोई बनाने के लिए, हड़िया खरीदने के लिए बाजार में जाओ तो वहां पर एक डंडा होता है, उसे बजाते खन खन बज रही है कि ठन ठन बज रही है। यदि खन खन आ रही है तो समझो जो ये फूटी हुई हड़िया है, ये पानी निकल जाए, और ठन ठन आ रही है, ठन ठन, ये पकी हुई है, ये टूटी नहीं है, उसको ले आओ। दो पैसे की हड़िया के लिए बजा करके देखते हैं, और जिस पर अपना जीवन निर्भर करता है ऐसे तैसे गुरु को कर लेंगे, वो दुर्भागा। जान करके कर भी लिया तो शुद्ध गुरु को फिर से करो, थोड़ा सा गुरु के महत्व बतलाइए। पन्ना में इसके बाद में इधर खड़े होकर के काम कर,
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव जी ने आदेश दिया गुरु तत्व के बारे में कुछ आलोचना करूं। जैसे आप लोगों ने सुना, किसी विषय में आपको एक्सपर्ट बनना है या किसी विषय में आपको ज्ञान अर्जन करना है, आपको किसी भी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। उसको आप एक्सपर्ट कहें या पारमार्थिक भाषा में गुरु कहें, एक ही तत्व है। श्रीमद् भागवत में बताया गुरु का लक्षण क्या है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुश्रेय उत्तमं शाब्दे परिचनिष्णातं ब्रह्मनुपसमाश्रयं। अर्थात यदि आप अपने कल्याण चाहते हैं क्या करना पड़ेगा, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। गुरुजी का लक्षण क्या है, कई कहे मैं गुरु हूं ऐसे तो कहने पर नहीं चलेगा, कुछ तो उनको सिम्टम तो होना चाहिए ना। क्या सिम्टम है, शाब्दे पारिचन स्नातम, उनका दो प्रकार के लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण एक आभ्यंतरीण लक्षण सदव लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है, शाब्दे चन स्नातम, जितने प्रकार के शास्त्र हैं, शास्त्र क्या है, ऋक्साम यजु अथर्वंच भारतम पंचरात्रकम मूल रामायण चैव शास्त्रं इत्यभिधीयते, जितने वेद है वेदांत मूल रामायण महाभारत उनके अनुगत जितने भी हैं ये सब शास्त्र, उसे पारंगत होना चाहिए। आपके किसी प्रकार के भी डाउट हो शास्त्र से कोटेशन दे करके आपके संदेह को दूरीकरण कर सकते हैं। और पारेच निष्णातम और ब्राह्मणों का समाज स्वयं, और दूसरा तटस्थ लक्षण क्या है, उपसमाश्रयम, संसार से विरक्त हो। वर्तमान जगत संसार से विरक्त नहीं है, क्या है, अधिकांश लोग जो लोग भजन नहीं करते और अभी सतगुरु चरणाश्रय नहीं किया है, ये 3W में सब समय अटैचमेंट है। क्या है, ओमेन ऑयल वाइन, विशेष करके पाश्चात्य जगत इसकी हवा भारत में भी जा रहा है, रोमन कहने पर अपोजिट सेक्स के लिए कहा गया है। और स्वरूप लक्षण क्या है, ब्राह्मण
भगवान की,
भगवान की अनुभूति संपन्न है, भगवान कौन है
दर्शन किया है,
मैं कौन हूं, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, प्रतिदिन जो नित्य रूप नवीन रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम देखते करते बैठे हुए पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है लेकिन क्या कर रहे हो, सब समय नित्य नवीन रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये उनके सर्व लक्षण है। और तपस्व में आ रहे हैं जो मैं बता रहा था, विशेषकर कस्तक जगत 3W9D में लिखित है। डी अर्थात ड्रिंक, क्या है, जहां भी जाइए पॉप सिंगर गा रहे हैं, ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक चल रहा है, ये डी फॉर ड्रिंक। और कहीं भी जाइए दो तीन डग लेके चलते हैं, चलती हैं सब, ये डग। और कुछ दिन बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ डांस, ये भी डी। इसके बाद डाइवोर्स, ये भी डी। फिर लोगों के मुझ करने चाहिए डॉलर, फिर चाहिए डायमंड जमा करने के लिए, फिर डेस्टिनी, ऐसे करके
भक्ति पर चलते,
डेथ के अंदेश करते हैं,
समय नष्ट।
ये पास्टर देश की ये कला है। ये ऐसे गुरु मिल करने पर क्या होगा, तो गुरु बिना किए हैं क्या हमारा भक्ति नहीं हो सकती, नहीं, संभव नहीं है। शास्त्र में कहा गया, बिना गुरु दीक्षा विहीन न सिद्धि न सदगति, गुरुना दीक्षिता भवे। ऐसे गुरु मिल जाए जो कि संसार से उपरत हो, सर्वशास्त्र में सुपंडित हो, उन भगवान के दर्शन कर चुके हैं, भगवान की नित्य सेवा कर रहे हैं। ऐसे गुरु मिल जाए तो क्या करना चाहिए, उनसे अपने परमार्थिक कल्याण के लिए जरूर दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। बिना दीक्षा से आपका सद्गति भी नहीं है और भगवत भक्ति भी नहीं है। साधारण मनुष्य की बात ही क्या, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र आए थे, स्वयं रामचंद्र, सीता देवी और रामचंद्र के और भाई और उनके पत्नियां, महाराज दशरथ, माता कौशल्या, कई की सुमित्रा, सभी लोग वशिष्ठ से गुरु दीक्षा ली थी। जब लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र आए थे तो क्या किया, भागवत ऋषि से दीक्षा ली थी। प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, ईश्वरपुरी बात से दीक्षा ली थी। ऐसे दीक्षा अनिवार्य है, बिना दीक्षा लिया भजन राज्य में आपका उन्नति संभव ही नहीं है। और किसी ने न जान करके दीक्षा ले लिया हो, नहीं जानते हो कैसे हैं, तो सोचते हैं कि गुरु को छोड़ना तो महा अपराध है, कैसे छोड़ू, गुरु को छोड़ना नहीं है। यदि उपयुक्त तो न हो, गुरु को छोड़ने के लिए कहा गया है, तो कोई पार, जैसे आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर आपको हाई स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या पहले टीचर तब छोड़ रहे हैं, नहीं, आपको उच्च शिक्षा के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ऐसे ही आप पहले नहीं जानते हो, विषय आपको पता चला तो क्या करना पड़ेगा, शास्त्र में कहा गया है जरूर दीक्षा लेनी चाहिए, उनको यथाजथ सम्मान देते हुए आपको दीक्षा लेनी चाहिए, आपके लिए कोई पारमार्थिक हानि नहीं होगी, ये गुरु अवज्ञा भी नहीं है। और ऐसे कुछ गुरु हो, कुछ जानते ही नहीं, आपको कुछ लालच दिखा करके या स्नेहवश आपने दीक्षा ले लिया, तो क्या करना पड़ेगा, पुनश्च विधिना सम्मत ग्राहे एक वैष्णवाद गुरु, पुनरा आपको जो वैष्णव गुरु हैं जिसका लक्षण पहले बताया, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, तो आप भजन राज्य में बढ़ सकते हैं, आपका पारमार्थिक कल्याण होगा। आप कौन है, किस लिए इस जगत में आए हैं, आपका कैसे कल्याण हो, तभी आप समझ सकते हैं, संभव नहीं। और जैसे स्नेहा लोभ से ले लिया क्या होगा, स्नेहा विवाह लोभ तो वापी जग वृन्नाद अधिक्षया ताबुभो नरकम घोरम प्रजत कालम अक्षयम। जिसके गुरु के कोई गुरुत्व ही नहीं है, कोई लक्षण ही नहीं है, कोई अच्छा गाना सीख लिया, कोई अच्छा वक्ता हो गया, यही गुरु का लक्षण नहीं है, उनसे अब न जानकर कर दीक्षा ले लिया हो तो क्या करना पड़ेगा। अगर आप परमार्थी गुरु ग्रहण नहीं करते हैं, तब उभो नरकम घोरम ब्रजत कालम अक्षयम, गुरु और शिष्य दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, नरकम घोरम घोर नरक में जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकते हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणा दीक्षिता भवेत्। ऐसे पारमार्थिक गुरु मिल जाए किसी भाग्यक्रम से, जरूर दीक्षा लेकर के भजन करना चाहिए, अगर आप सुखी होना चाहते हैं या चाहती हैं, नहीं तो आपको कोई भजन में बढ़ा नहीं सकते, आप सुखी सुख शांति लाभ नहीं कर सकते या नहीं कर सकती। हरे कृष्ण।